रजिया के शासन के बाद उसका भाई मुजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक गद्दी पर बैठा। इसी के काल में अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में ही बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और सुल्तान को जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक गद्दी पर रहा। इसके समय में सुल्तान और तुर्की सरदारों के बीच जो संघर्ष चलता रहता था वो समाप्त हो गया। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो एक बहुत शांति प्रिय शासक था। खाली समय में ये कुरान की आयतों की नकल करता रहता था। इसने शासन की सारी बागडोर उठा के बलबन के हाथ में दे दी और बलबन को उलुग खां की उपाधि भी दी। बदले में बलबन ने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद से। नासिरुद्दीन महमूद के साथ बलबन की जो निकटता बढ़ रही थी उसे देखकर तुर्की सरदार जो थे वो ईर्ष्या करने लगे। तुर्की सरदारों ने षड्यंत्र रचकर बलबन को नायब के पद से विमुक्त कर पुनः उसे अख्ताहासी पंजाब भेज दिया। यानी अब रेहान नायब बना। इससे तुर्की सरदार घृणा करते थे, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। 1254 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपने सरदारों के परामर्श पर रेहान को उसके पद से हटा दिया और पुनः बलबन को वहां ही बुला लिया। अब बलबन ने इससे अपनी बेटी की भी शादी की थी और वास्तविकता में बलबन ही इसका शासन भी चलाता था नासिरुद्दीन महमूद का। उसके बावजूद बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को जहर दे के मार दिया और गद्दी पे बैठा। एक बिने बतूता जो है उसकी रचनाएं रहेला, उसमें ये सब वर्णन मिलता है। तो अब आगे हम जानेंगे बलबन के बारे में, क्योंकि इसका एक उल्लेखनीय शासन काल रहा है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो देखते हैं कि बलबन ने क्या क्या किया, कब बैठा। बलबन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1287 तक रहा। बलबन ने शासन पर बैठते ही पहले तो बलबनी वंश की नींव डाली। अब जानते हैं कुछ बलबन के बचपन के बारे में। बचपन में इसे मंगोल पकड़ के ले गए थे और गजनी में ले जाकर बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन इसे दिल्ली ले आए। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और उसकी योग्यता से जो प्रभावित होकर उसे खासदार का पद सौंप दिया। ये बेसिकली इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। रजिया के काल में फिर ये अमीर शिकार के पद पर बैठ गए और बहराम शाह के काल में अमीर आकूर वो अश्वशाला का प्रधान जो होता है वो। जब ये 1265 में बैठे तो इन्होंने गयासुद्दीन नाम से ये गद्दी पे बैठे। अब जब ये गद्दी पे बैठा तो विशेष बात ये थी कि राजा के पद की जो गरिमा थी वो एक तरह से समाप्त हो चुकी थी। राजा के पद की गरिमा उतनी नहीं रही थी, गिर गई थी पिछले, क्योंकि राजा कुछ शक्तिशाली नहीं थे इल्तुतमिश के बाद वाले, एक रजिया को छोड़ के। तो राजा के पद की जो गरिमा थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो इसका पहला काम था कि राजा के पद की गरिमा बनानी है। अब क्या क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो इनकी जो नीति है उसको लौह और रक्त नीति के नाम से जाना जाता है। लौह और रक्त नीति या रक्त एवं लौह नीति का पालन इन्होंने किया। इसमें सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत की पुख्ता प्रबंध की व्यवस्था की, राजस्व के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। इसने कहा कि जो सुल्तान होता है उसका पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है, और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और बलवन का जो राजत्व सिद्धांत है उसे अर्धदैवीय राजत्व सिद्धांत भी कहते हैं। इसने एक और उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। बलवन के अनुसार राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, उसको प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त होती है, तो उसके किए हुए कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। बलवन स्वयं को फिरदौस के शहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का बताता है। बलवन कहता था, मैं जब किसी छोटी जाति के या कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उसे बहुत क्रोध आता था छोटी जाति के लोगों को देख के, और शासक वर्ग में भी, और मैं वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही नियुक्त किया करता था। बलवन के दरबार में ना तो कोई हंसता था और ना कोई मुस्कुराता था। दरबार में संपूर्ण वेशभूषा के साथ उपस्थित होता था और दरबारियों से शिष्टाचार को कठोरता से लागू करवाता था। कई ईरानी परंपराएं जो है लागू की, जिससे राजा का प्रभाव बढ़े, जैसे सिजदा, सिजदा करना, जिसमें भूमि पर लेटकर, मतलब जमीन पर पूरा लेट के अभिवादन जो करते हैं, पूरा लेट के जमीन में उल्टा, वैसा, और पैबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमो, ये व्यवस्थाएं इसने लागू करवाई। इसने फारसी रहन सहन की परंपराओं को ही अपनाया और अपने पुत्रों को नाम भी फारसी सम्राटों की तरह ही कैकुबाद और कैकुसरो आदि रखे। कठोरता इतनी थी कि शराब वराब पीना भी सब बंद करवा दिया, कोई शराब नहीं पी सकता था, जो भी शासन में थे लोग, ना तो कोई शराब पी सकता था, ना कोई हंसता मुस्कुराता। और दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता था। नौरोज की शुरुआत इसने कराई। इसने अपने चचेरे भाई शेर खां को भी जहर दे के मार डाला, कुरान के नियम पे अपने शासन को चलाया। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जो इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी बनाया था, 40 लोगों का, 40 तुर्क सरदारों का जो समूह था, उसको इसने नष्ट कर दिया। 40 जो थी, 40 दल या तुर्काने चहलगानी, उसको नष्ट किया, क्योंकि वो शासन में बहुत दखल रखते थे और प्रभावित करते थे फैसलों को, तो उनको पहले हटाया, जैसे भी किसी को मार के या किसी को कैसे भी करके। इससे पहले ही स्वयं तुर्काने चहलगानी का एक सदस्य हुआ करता था। बलवन अपने सैनिक अभियानों को भी गुप्त रखता था और सैन्य अभियान के लिए रेवाड़ी जो है हरियाणा, वहां पे सैन्य अभ्यास किया जाता था। 1285 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, और इसका एक पुत्र था मोहम्मद बलवन का, जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, और बाद में इसी के वियोग में शायद बलवन की मृत्यु भी हो गई। और बलवन का जो अन्य पुत्र था कैकुसरो, उसने लाहौर यानी मुल्तान की रक्षा की। बलवन को मोहम्मद की मृत्यु का इतना आघात पहुंचा कि 1286 में उसकी मृत्यु हो गई। इसने और भी काफी सारे काम किए थे। जैसे कि इसने जो अक्तादार प्रणाली थी, इक्ता प्रणाली, उसमें भी सुधार किया, मेवातियों का दमन किया, भविष्य की लूटमार को रोकने के लिए गोपालपुर में एक दुर्ग बनवाया, इसी काम से। और इसके काल में ही तुगरिल खान जो बंगाल में था उसने भी विद्रोह किया। बलबन की मृत्यु के बाद मोहम्मद का पुत्र कैखुसरो जो था उसे, जिसे कि बलबन ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, बलबन ने कहा था कि हम कैखुसरो जो है वो बैठेगा गद्दी पे, क्योंकि मोहम्मद की तो मृत्यु हो चुकी थी। इसको तुर्क अमीरों ने नहीं बनाया, इसको भेज दिया मुल्तान का प्रांतीय शासक बना के। अब दिल्ली के कोतवाल फकरुद्दीन ने बुगरा खां के पुत्र, बुगरा खां जो था वो बलबन का एक और पुत्र था, कैकुबाद को सुल्तान मोइजुद्दीन का खिताब देकर गद्दी पर बिठा दिया। यानी जिसे बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था कैकुसरो को, तुर्क अमीरों ने उसे नहीं बनाया। उसके अलावा बलबन का एक जो दूसरा पुत्र था उसके पुत्र को बनाया। इसका एक पुत्र था मोहम्मद जो कि वहां मारा गया, उसके पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करके गया और मर गया, लेकिन उसे अमीरों ने नहीं बनाया, बनाया दूसरे को, दूसरे पुत्र के पुत्र को, यानी बोरा खां के पुत्र को, कैकुबाद मोइजुद्दीन को। अच्छा, अब 1287 से लेकर 1290 तक कैकुबाद मोइजुद्दीन गद्दी पर बैठा। कैकुबाद ने शासन बनने के बाद कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन को विष देकर मरवा डाला। कैकुब कुछ दिन बाद लकवाग्रस्त हो गया, बेचारे बैठे ही थे गद्दी पे कि इनको लकवा मार गया। फिर क्या हुआ, और भी काफी सारी चीज थी, क्या क्या हुआ देखिए। एक तो तुर्क अमीरों ने उसके अबोध पुत्र को शमसुद्दीन कैमूर्स के नाम से सिंहासन पर बिठा दिया। शमसुद्दीन कैमूर्स का संरक्षक जलालुद्दीन जो गैर तुर्क सरदार था, जिसे कैकुबाद ने सामना से बुलाकर बरन का राज्यपाल तथा आरिज़ मुमालिक युद्ध मंत्री बनाया था, उसको बनाया गया। मौका पाकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की, और इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया। तो अब अगर ये सवाल आता है कि सबसे अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का, तो शमसुद्दीन कैमूर्स था, और सबसे प्रभावशाली अंतिम शासक तो बलबन था। तो आगे शुरू होगा खिलजी वंश।